بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام قیام سے قیام تک میں آج پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جناب مختار کے اعتقادات، اور کس مسلک سے، کس فقہ سے جناب مختار منسلک تھے، آئیے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود مولانا نجیب الحسن صاحب ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
مولانا، کیا اعتقادات تھے جناب مختار کے؟ یعنی ہمیں چار مسالک ملتے ہیں کہ جن سے کوئی نہ کوئی عظیم شخصیت مربوط رہی ہے، یا جس نے اس مسلک کو یا اس مذہب کو اپنایا ہے۔ تو جناب مختار کے ہمیں کیا اعتقادات ملتے ہیں؟ کون سے مسلک سے وابستہ نظر آتے ہیں؟
چار مسلک جو ہمیں ملتے ہیں، یہ کب سے ملتے ہیں؟ چار مسلک جو ہیں، ظاہراً امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام 132 کے بعد یہ سارے مسالک شاید وجود میں آئے ہیں، اور اس سے پہلے تو کچھ چار مسلک نہیں تھے، ایک ہی مسلک تھا، بلکہ دو ہی اس کو اگر کہا جائے، یا وہ افراد تھے جن کا تعلق مکتب غدیر سے تھا، یا وہ لوگ تھے جن کا تعلق سقیفہ سے تھا۔ اب جناب مختار کے سلسلے میں اگر گفتگو کی جائے، تو ظاہر ہے کہ اگر جناب مختار کی شخصیت مثلا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور، یا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، یا اس کے بعد کی ہوتی، تو ان مسالک کی گفتگو کی جا سکتی تھی کہ مثلا امام حنبل کے پیروکار ہیں، کہ مالک کے ہیں، کہ شافعی کے ہیں، کہ حنیفہ کے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ واقعہ سن 61 کے بعد 63 کا ہے، تقریباً 1.5 سال جناب مختار کی حکومت ہے کوفے پر، اور 67 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہے۔ تو قطعاً یہ سوال شاید یہاں پر مناسب نہ ہو۔ کچھ لوگ اس دور میں تھے جو عثمانی طرز فکر کے حامل تھے، کچھ وہ لوگ تھے کہ جو مثال کے طور پر محب تھے، محبت رکھتے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، لیکن عقیدہ شیعیت ان کے وجود کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ اگرچہ بعض علماء اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں مختار کے لیے بھی مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا، ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ محب اہل بیت تھے۔ خاص طور پہ یہ لوگ استناد کرتے ہیں علامہ مجلسی کی گفتگو سے، کہ علامہ مجلسی نے مکمل بحث کی ہے روایات جو مختار کے سلسلے میں اخبار آئی ہیں، ان کے پورا جائزہ لیا ہے، اور جائزہ لینے کے بعد کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں تھیں مختار کے سلسلے میں کہ جو قابل قبول نہیں تھیں جناب مختار کی، پھر نتیجہ دیا ہے۔ لیکن چونکہ بہت ائمہ نے ستائش کی ہے، مدح کی ہے، اور بہت سراہا ہے مختار کے عمل کو، تو وہ نتیجہ دیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جناب مختار بہشت میں ہوں گے اپنی تمام تر خطاؤں کے باوجود۔ البتہ یہ خطا ہم نہیں کہہ رہے ہیں، علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں، ایک بزرگ شخصیت۔
البتہ یہ بھی ان کی اپنی تحقیق ہے کہ ہاں خطا تھی۔ بہرحال یہ سوار آمدن کیا گیا تھا تاکہ ہمارے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک پورا خاکہ اس دور کا کھچ جائے، اور جناب مختار کے چونکہ اعتقادات کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ اس زمانے میں اعتقادات کی بحث کس طرح کس طرح ہوا کرتی تھی۔ میرے جہاں تک مطالعہ کیا ہے اور آپ کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے، کہ اس زمانے میں اعتقادات بہت زیادہ آشکار نہیں تھے اور بہت زیادہ جدا نہیں تھے، بلکہ بہت ہی زیادہ ان اعتقادات میں اور کسی بھی شخص کے دین مسلک یا وہ نظریات جو اس نے اختیار کیے، اس میں بہت زیادہ ابہام موجود تھا۔ ہمیں کوئی بھی اگر ہم اس زمانے کی تاریخ کو دیکھیں، تو ہمیں شخصیات اپنے فیصلوں کی بنیاد پہ ہمیں کبھی کسی گروہ کے ساتھ نظر آتی ہیں اور کبھی کسی گروہ کے ساتھ نظر آتی ہیں، جو بڑی شخصیات، اگر میں یہ بات درست کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہاں اس دور میں ہمیں دو شخصیات ملتی ہیں، جناب محمد ابن حنفیہ اور جناب امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام۔ دونوں شخصیات بہرحال قابل احترام ہیں، بزرگ شخصیات ہیں۔ اس زمانے میں دو طرح کے نظریے ہمیں ملتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مختار جناب محمد ابن حنفیہ کے پیروکار تھے اور ان کو فالو کرتے تھے، دین میں کہہ لیں، شریعت میں کہہ لیں، یا کسی بھی طرح کے کام میں۔ دوسرے افراد یہ کہتے ہیں، دوسرا جو طبقہ ہے، گروہ ہے افراد کا، وہ یہ کہتا ہے کہ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام سے منسلک تھے اور ان کو فالو کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے۔ इस सिलसिले में मैं चाहूँगा थोड़ी रोशनी डालें।
जी, इस सिलसिले में उलमा जैसे मसलन इब्ने नुमाहिली हैं, उसके बाद मसलन अभी मासीन में खुद आगे खुई हैं, जो इस तरह के अफराद हैं, इन्होंने जो गुफ्तगू की है, हम इसी गुफ्तगू को मोतबर समझकर यानी एक नतीजा ले सकते हैं, चूँकि इनकी एक नज़र रही है। इन्होंने बयान किया है कि यकीनन दामे मुख्तार इसना शरी शिया थे, और ऐसा नहीं था कि मसलन कैसानी फ़िरके से उनका ताल्लुक़ हो। ये एक मुश्किल हुई है जनाबे मुख्तार के साथ में कि कैसान और फिर जनाब मुख्तार का लकब मसलन, जो कि कैसान है और
कैसा
कैसानी फ़िरका, जबकि इसको जो कहा जाता है कि चूँकि कईस या कईस मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने जानों पर बिठाया था, जनाब मुख्तार से कहा था, तो ये कियासत से है, यानी गोया फिरासत जनाब मुख्तार की, ज़कावत उनकी, उनकी ज़हानत, उनकी तेज़ी, उनकी होशियारी, इस चीज़ को बयान कर रहा है। और इस बुनियाद के ऊपर मसलन उनको कहा गया कैसान, या बाज़ ने बयान किया कि चूँकि उनका जो कमांडर था उसका नाम मसलन कैसान था, उलमा ने इसको बयान किया है कि कैसानी फ़िरके से जनाब मुख्तार का कतन ताल्लुक़ नहीं था, अगरचे तारीख़ में इस तरह के शवाहिद और इस तरह के क़राइन मौजूद हैं, और कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो बयान करती हैं, लेकिन उलमा इसको बयान करते हैं कि देखें, जब एक शख्सियत बड़ी हो जाती है और वो तारीख़ के दायरे के ऊपर छा जाती है, एक ऐसी शख्सियत, तो अब उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लोग तवज्जो करते हैं,
जी हाँ बिल्कुल।
कुछ शख्सियतें गुमनाम होती हैं उनके बारे में कुछ नहीं। अभी मसलन जनाब मुख्तार ये क़याम ना करते तो खूब इतनी बड़ी शख्सियत नहीं थे और इतने ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं थी उनके बारे में, लेकिन इस वक्त एक बड़ा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है, तो अब उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो लोग खार खाए हैं जनाब मुख्तार से, जैसा कि मसलन शहादत जनाब मुख्तार के बाद मसलन इब्न अब्बास अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के पास मसलन गए या मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि तुमने खबर नहीं सुनी कि हमने कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया। तो इस तरह से कि जो खुद एक ज़माने में इन्हीं के सिपाह में था, इन्हीं के लश्कर में था, और उससे बड़ा सादिक कोई नहीं था, और उसको उन्होंने अपना कमांडर बनाया हुआ था आले यजीद से मुकाबले के लिए, कि जब वाक़ हर्रा हुआ और ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं, तो एक ख़तरनाक सूरत हाल थी, और मुख्तार आ गए थे, तो उस वक्त मुख्तार से सादिक कोई नहीं था, मुख्तार से अमीन कोई नहीं था, और उनसे ज़्यादा साहिब फ़िरासत कोई नहीं था। अब जब गोया मुख्तार इनकी सियासत से मुख्तार का तनासुब नहीं रहा
मेल नहीं
और
खा रहे
मेल
थे
नहीं
किसी
खाया,
से।
तो अब ये नतीजा हुआ कि मसलन कज़्ज़ाब। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी
और हो सकता है
चीज़ें
इसको कोई तारीखदान या कोई मौर्रख उठाए, कोई मुसन्निफ इस चीज को उठाए और कहे
कि
कि चूंकि
मसलन
उन्होंने
जी
इस तरह
मसलन
की बात की है
मसलन
इब्ने अब्बास
कज़्ज़ाब
ने, तो उनकी बात पे इस्तनाद करते हुए
नहीं,
यानी,
जो
और हम
जबकि
कहें कि मुख्तार कज्जाब थे।
नहीं, पूरी बात भी अगर आगे पढ़ लें तो यानी रिवायत को पूरा देखिए, तो इब्न अब्बास ने फिर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो कज़्ज़ाब नहीं थे, बल्कि उन्होंने उन लोगों को कसास किया, उन लोगों से कसास लिया, या कि जिन्होंने हमारे ख़ानदान को शहीद किया, हमारे अहले बैत को गोया असीर किया, जनाब मुख्तार ने उनसे मुकाबला किया, कतन ऐसा नहीं। और इसी तरह से रिवायतें हैं मुख्तलिफ के आके लोग मसलन उस ज़माने में कज़्ज़ाब कहते थे और झूठा कहते थे, कोई ये शख्स मसलन अपनी हुकूमत के लिए, इक्तदार के लिए ये सब काम कर रहा है, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी जो इस चीज़ को बयान करती थी कि जनाब मुख्तार गोया खुद अपना वो चाहते थे, अपना तसल्लुत चाहते थे। ख़ास तौर पर जनाब मुख्तार ने जो शर्त अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से लगाई थी कि मैं इस शर्त पर तुम्हारी बैत कर रहा हूँ कि एक तो ये कि तुम हर मसले में मुझसे मशवरा करोगे, और दूसरी मशवरे के साथ साथ एक बड़ी शर्त ये थी कि इराक़ अरब को तुम मेरे हवाले करोगे, उसकी हुकूमत मेरे पास होगी। तो इससे लोग इस्तेफादा करते हैं कि ये दरहकीकत मुख्तार की पहले से आरजू थी कि पहले से हुकूमत करना चाहते थे, जबकि मुख्तार ने खुद मुसलसल इस चीज़ को बयान किया है कि मेरी जो भी आरजू है, मेरी जो भी तमन्ना है, वो सिर्फ ये है कि कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैं कसास लूँ, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाऊँ। अब जनाब मुख्तार के सिलसिले में मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये भरी हुई हैं तारीख़ में, लेकिन जब जाहिर है कि शख्सियत बड़ी होती है तो उसके
छोटे छोटे पहलुओं पे भी नज़र होती है, जिस तरह हम जब आइम्मा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू करते हैं तो हम उनके रंग, कद, उनके बाल, उनकी आंखें, उनके आबरू, इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। यहाँ पर नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब मुख्तार के एतकादात के ऊपर गुफ्तगू जारी है। मौलाना, जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मुंसलिक हैं और
दवाज़ इमामी हैं इसना
दवाज़,
शरी।
हाँ यानी 12 इमामों को मानने, इसना शरी जनाब मुख्तार की शख्सियत है, इमाम अली अलैहिस्सलाम से भी वाबस्ता रहे, तो अब ये बहुत ही अहम एक तारीख का सवाल है और अफराद इस सवाल को मुतअद्दिद बार पूछते हैं जब भी जनाब मुख्तार की गुफ्तगू होती है कि ये आया इमाम ने इनको इजाज़त दी थी या नहीं दी थी, क्योंकि ये बड़ा एक मसला है हमारे माशरे में कि हम बाज़ अफराद ये कहते हैं कि नहीं, इनको इजाज़त नहीं दी थी और इन्होंने जो भी कयाम किया और जिस जो भी इंतकाम लिया वो खुद अपनी मर्जी से लिया, लेकिन दूसरा तबका ये कहता नहीं, इमाम सज्जाद ने इनको इजाज़त दी है, लेकिन उस इजाज़त का अंदाज़ दूसरा था।
जी देखें, एक मरतबा इजाज़त एक मकतूब की हैसियत से है, तहरीर है कि हम तुम्हें इजाज़त देते हैं इस क़याम की। एक मरतबा ऐसा है कि हालात ऐसे नहीं हैं और माशरे की सूरत हाल बहुत नाजुक है। ऐसे मौके पर जहाँ जुल्म अगर हुआ है तो जालिमों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है। वहीं पर कोई ऐसा अमल नहीं अंजाम देना है कि जहां किसी एक गिरोह से या कुछ ख़ास अफराद से वाबस्तगी का इजहार हो। अब देखें, इसीलिए इमाम ज़ैनुद्दीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में है कि वाकई करबला के बाद जो सूरत हाल है वो एक मदीने के बाहर खैमा लगा के वहाँ बैठे हुए हैं और अपनी इबादत में मशगूल हैं। दुआओं को आपने जरिया बनाया है पैगाम रसानी का। गुफ्तगू भी अगर कोई इमाम से करता है तो इमाम दुआओं के अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये ख़तरनाक दौर है। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, वलीद इब्न अब्दुल मलिक, ये ख़तरनाक तरह के ऐसे अफराद हैं कि जिनके सामने अब इमाम मकतबे करबला को गोया पहुँचाना है और फिक्र गदीरी को लोगों तक मुंतकिल करना है, लेकिन कैसे करें? ये इख्तदार के मसलन भूखे लोग हैं। तो अब आप देखें कि एक तख्त पर मसलन बाज़ मकामात पर हिशाम के साथ मौजूद भी हैं, साथ में इमाम को बुलाया है तो वहाँ गए हैं, लेकिन अपना जो रवैया है, जो शेवा है इमाम ने, वो दुआओं के ज़रिए से तर्ज़ यानी जो गुफ्तगू है वो दुआ है इमाम की। ऐसे में इमाम से बहुत ज़्यादा ये नहीं किया जा सकता कि मसलन इमाम किसी को कोई जाए और क़याम की बात करे और इमाम मसलन उसको कहें कि, जबकि उससे पहले की बात है जहाँ मुख्तार का क़याम, अभी मैं हिशाम और वलीद बिन अब्दुल मलिक की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी गोया उस ज़माने में कि जहाँ मसलन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है, हाकिम है, और ऐसे मौके पर मसलन इमाम देख रहे हैं कि रस्साकशी है यजीदियों के दरमियान, आले मरवान और ज़ुबैरियों के दरमियान। ऐसे में इमाम एक शोशा मसलन छोड़ें क़याम का और उसके बाद क्या नतीजा हो सकता है, लिहाजा इमाम खामोश है। लेकिन उलमा इस चीज़ को बयान करते हैं कि ऐसी मुतअद्दिद रिवायतें हैं और अहादीस में हम तलाश कर सकते हैं उस सिरे को जो हमें ये बताएं कि ये क़याम इमाम ज़ैनुद्दीन अलैहिस्सलाम की इजाज़त से था। ख़ास तौर पर अल्लामा तक़ी मुदर्रिसी ने इस बात को बयान किया है कि यकीनन कहते हैं कि गोया इमाम ने एक रुख को दूसरी तरफ मोड़ा था और मोहम्मद हनफिया को मामूर किया था, अपने चचा को मामूर किया था इस बात की तरफ कि उनकी जानिब से ये अमल हो, खुद सामने नहीं आए थे। इसलिए आप देखें कि मसन अब्दुलरहमान बिन शुरह कामिल इब्न असीर ने इस बात को नकल किया, वाकई कुछ जब मुख्तार के पास आते हैं और मुख्तार बयान करते हैं कि मसन मुझे क़याम के लिए मैं तुम लोग को बुला रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ, मुझे कातिलीन से क़िसास लेना है, तो ये वो शख्सियतें हैं जो अशराफ में से हैं, इनको शक होता है, जैसे बाज़ आजकल बाज़ शिया इस तरह के मसाइल में मसन सोचते हैं कि क्या करें, एहतियात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम जाएंगे मोहम्मद हनफिया के पास और हम उनसे पूछेंगे। और आते हैं मोहम्मद हनफिया के पास, आने के बाद जब इजाज़त लेते हैं तो खामोशी से पूछते हैं बहुत ही हल्के अंदाज में कि तुम्हारा काम ऐसा तो नहीं है कि गुफ्तगू सिर्री हो, मख्फी हो? कहा हाँ, हमें मख्फी गुफ्तगू करना है। तो आप दूसरी तरफ आते हैं, गोशे में आ जाते हैं, गोशे में आने के बाद बैठते हैं, पूछते हैं भाई क्या बात है? कहते हैं कि अहले बैत ने अथार अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने फजीलत बख्शी, ये शुरह कहते हैं अब्दुलरहमान, के अहले बैत को फजीलत बख्शी परवरदिगार ने और उनके ज़रिए से अपने हक़ को पहचानवाया, लोगों को मुतारफ़ कराया। इस वक्त सूरत हाल यह है कि अहले बैत ही का नाम लेकर मुख्तार ने क़याम शुरू किया है, और वो कहते हैं कि आपकी उसके उन उनके क़याम के अंदर ताईद उनको हासिल है, तो आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? अब ये देखें, आप जवाब देखें मोहम्मद हनफिया का, कि मोहम्मद हनफिया की तरफ उतनी हुकूमत वक्त की तवज्जो नहीं है जितनी इमाम सज्जाद की तरफ है।
जी
इमाम मासूम है, लेकिन एहतियात आप देखें, इससे अंदाजा लगाएं कि हालात क्या थे। तो मोहम्मद हनफिया उस वक्त कहते हैं कि ये परवरदिगार का एक इम्तहान था जो अहले बैत से लिया परवरदिगार ने, कि हमारे गोया अहले बैत के घराने के बहुत सारे अफराद करबला के मैदान में शहीद हुए, और हम ये दोस्त रखते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई हो जो इनका इंतकाम ले। अब देखें, ये पूछ रहे हैं कि जनाब मुख्तार की ताईद है।
मुख्तार ने
हाँ
जो
हाँ
कयाम किया वो कैसे है, और ये जवाब दे रहे
ये
हैं बिल्कुल
जवाब
उमूमी।
बिल्कुल जवाब, हम दोस्त रखते हैं, कोई हमारा कोई हो जो कसास ले और इंतकाम ले हमारा, और मैं उन लोगों के लिए तलब मगफरत करता हूँ जो इस क़याम में शरीक हैं, खुदा उनको जजाय खैर दे। जब ये मंजिल होती है तो वहाँ पर एक शख्स है असवद, जाहिर असवद बिन जुरात करके, वो बाहर निकल के कहते हैं कि हमारा जवाब मिल गया। तो कि जवाब क्या है? शुरह अब्दुलरहमान शुरह कहते हैं, जवाब यह है कि यानी ताईद है गोया। कहाँ से तईद? यानी उस ज़माने में वो लोग जो खास शिया थे, वो हालात को देखते हुए समझ रहे थे कि क्या मामला है। इसके अलावा इब्ने नुमा ने इससे आगे बढ़कर एक रिवायत की है कि यानी जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और मोहम्मद हनफिया के दरमियान में गुफ्तगू है, तो इमाम ये कहते हैं अपने चचा से कि चचा, कोई अगर हमारे हक के लिए और अहले बैत अलैहिस्सलाम के कातिलों से कसास लेने के लिए अगर कयाम करता है, तो मैंने इस मसले को, इस अमर को आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपको कैसे डील करना है, आपको कैसे आगे बढ़ाना है। ये एक नकल है जो इब्ने नुमा ने बयान किया है
हाँ, यहाँ पे
कि
यानी मेयार दे दिया है, अब उस मेयार के ऊपर जो शख्सियत पूरी उतरे, चाहे मुख्तार हो चाहे कोई और हो, अगर वो कातिली ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेती है तो वो मुरीद ताईद है
जी
जनाब इमाम
जी
सज्जाद की और
और
मोहम्मद इबन
इसीलिए आप
हनफिया।
देखें कि इंतकाम लेने का मसला अलग है, तश्कील हुकूमत का मसला अलग है, कई चीज़ें हैं जो आपस में मखलूत ना
जी
हो। इंतकाम लेने की बात की है, और दूसरी चीज़ों का उसका लाजमा हो या किस तरह से उसको हल किया जाए वो एक अलग मसला है, कि इंतकाम लेने का लाजमा यह कि हुकूमत हो और हुकूमत के बगैर नहीं हो सकता, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन इमाम ने बहरहाल जब इमाम से सवाल हुआ है और इमाम से मसलन पूछा गया कि क्या है, तो इमाम ने इस तरह का जवाब दिया है। और ख़ास तौर पर जब मसलन पिसरे ज़ियाद का और उमर साद का सर आया है इमाम के पास, तो इमाम खुश हुए हैं। और रिवायात में यहाँ तक है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाशमी ख़वातीन ने अपने बालों में हिना लगाना मसलन छोड़ दी थी, और पहली बार हिना उस वक्त लगाई है वाकई करबला के बाद कि जब मुख्तार ने अपने क़याम का आगाज़ किया है। और फिर ये कि मसलन खुदा रहमत करे मुख्तार के ऊपर, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो इस चीज़ को
जी
बयान करती हैं
जी
कि
बिल्कुल, बाज़ औक़ात ये तारीख हमें
जी
बहुत सारी चीज़ों का जवाब खुद देती नज़र आती है।
जी
और खुद इमाम यानी जिस तरह मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि खुद इमाम की ये सियासी स्ट्रेटजी थी जो इमाम ने
जी
अपनाई। बाज़ औक़ात इमाम होता है जो अलल एलान कयाम करता नज़र आता है, बाज़
जी
औक़ात सुलह करता नज़र आता है, बाज़ औक़ात उसकी खामोशी में ही उसकी सियासत छुपी हुई होती है। बहरहाल, इतनी मजबूत शख्सियत और मुहिब्बे अहले बैत
जी
शख्सियत हैं, काम जिस तरह अभी आपने गुफ्तगू की जो दलालत करती है इस बात पे कि हाँ, इनको ताईद हासिल थी इमाम सज्जाद की, करबला के मैदान में नजर नहीं आते।
जी ये एक बहरहाल सवाल है कि और सवाल आपने बड़े अच्छे अंदाज में किया है कि करबला के मैदान में नजर नहीं आते इतनी तमाम चीज़ों के बावजूद। तो इसका जवाब यह है कि यानी बहरहाल अगर तारीख पर नज़र है तो मिलेगा कि क्या सूरत हाल है। जनाब मुस्लिम जब आए हैं मोतबर तारीखी मदारक और मनाबे में है, खासतौर पर शेख मुफीद ने और तबरी ने अपनी तारीख में लिखा है कि जब जनाब मुस्लिम वारद कूफा हुए तो सबसे पहला जो घर था जहाँ आप ने रिहाइश अख्तियार की, जहाँ पे आपने सुकूनत अख्तियार की, वो जनाब मुख्तार का घर है। इसका मतलब क्या है कि पहले से जनाब मुख्तार के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, तभी तो जनाब मुस्लिम आ रहे हैं। इतनी बड़ी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, दीबाचे करबला हैं जनाब मुस्लिम, और एक सफ़ीर की हैसियत से आए हैं, और एक सफ़ीर ज़ाहिर है कि जनाब मुस्लिम बाबसीरत हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ऐसे को भेज रहा हूँ कि जो गोया जिसकी जो दूरंदेश है वो शख्सियत आती है और जनाब मुख्तार के घर में। अब ये दूसरी यानी एक करवट है हालात की कि जनाब मुख्तार इस्तकबाल करते हैं और मदद की यकीन दहानी कराते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद अजीम मौरिख बिलाजरी ने इस बात को नकल किया है कि जनाब मुख्तार सबसे पहले जनाब मुस्लिम जनाब मुख्तार के घर में हैं, लेकिन फिर हालात उस वक्त पलटते हैं जब इब्ने ज़ियाद कूफे में दाखिल होता है। जब इब्ने ज़ियाद कूफे में दाखिल होता है हालात बदल जाते हैं, पलट जाते हैं। तो अब जनाब मुस्लिम भी ये फैसला करते हैं कि अब मुख्तार के घर में नहीं रहा जा सकता, लिहाजा इसीलिए जनाब मुस्लिम मुंतकिल हो जाते हैं जनाब हानी के घर पर। और यहाँ से फिर अब जनाब मुख्तार का मसला है कि जनाब मुख्तार जब इस चीज़ को देख रहे हैं कि हालात नाजुक हैं, इब्ने ज़ियाद आ गया है, कूफे से निकल जाते हैं। हत्ता कूफे के बाहर लोगों से जाके जनाब मुस्लिम के लिए बैत ले रहे हैं कूफे के बाहर, और नतीजा होता है कि जब दरवाजे कूफे पर आते हैं तो एक मामूली सी झड़प भी होती है इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों से, लेकिन जनाब मुख्तार उस वक्त नहीं चाहते हैं कि आपस में कोई झगड़ा हो। इब्ने ज़ियाद इतना खून का प्यासा है कि इनाम का ऐलान करता है, कहते हैं अगर कोई मुख्तार को पकड़ के लाए या मुख्तार का सर लेके आए तो मैं इनाम देने के लिए उसके ऊपर तैयार हूँ। तो इसका मतलब यह है कि तलाश है जनाबे मुख्तार की। जनाब मुख्तार एक सियासत एक तदबीर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये होता है कि बहरहाल एक शख्स है जनाब मुस्लिम जनाब मुख्तार और इब्ने ज़ियाद के दरमियान राबता बनता है, जनाब मुख्तार के दोस्तों में है, और जनाब मुख्तार से बताता है कि इब्ने ज़ियाद तुम्हें इस तरह ढूंढ रहा है। अब जनाब मुख्तार पहुँचते हैं वहाँ जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में, तो हालत यह है कि गुस्से के मारे कांप रहा है, अपनी छड़ी उठाता है, उसके पास एक असादा छड़ी उठा के जनाब मुख्तार के मारता है, उनकी आंख चली जाती है, नाबीना हो जाते हैं, यानी तकरीबन एक तरह की कैफियत के जख्म आ जाता है।
या थोड़ी सी गुफ्तगू समेटनी
हाँ मैं समेट
है
रहा हूँ
क्योंकि
बिल्कुल।
वक्त हमारे
तो
पास।
मैं इस चीज़ को बयान कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, उसके बाद इब्ने ज़ियाद पकड़ के जिंदान में डाल देता है। अब जब वाकए करबला रुनुमा हुआ तो मुख्तार जैसी शख्सियत जेल में है, जिंदान में है।
जिंदा में
तो ये यहीं से जवाब मिलता है कि करबला में क्यों नहीं है, इसलिए कि जनाब मुख्तार जिंदान में थे। और फिर वो जो हमें नकल मिलता है कि
यहाँ पे इख्तियारी गुफ्तगू नहीं है कि अपने इख्तियार से वो जिंदान यानी करबला के मैदान में नहीं आए बल्कि मजबूर थे और उस वक्त जिंदान में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए बहुत सारा वक्त निकाला ताकि हमारे सवालात के जवाब दें। नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पे हमारा SMS और ईमेल एड्रेस मौजूद है, हमें सवालात लिखकर भेजें जिस तरह गुज़श्ता प्रोग्रामों में भी हमारे उलमा कराम ने आपके सवालात के जवाब दिए। इस एड्रेस को, इस SMS और ईमेल एड्रेस को नोट कर लें ताकि आप अपने सवालात हम तक पहुंचा सकें और हम उसके जवाब अपने उलमा कराम से ले सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।